आठ सामवेदी संगीत। सामवेदी संगीत से संबद्ध कुछ आवश्यक बातें यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। एक स्वर। सामवेदी मंत्रों के ऊपर एक दो तीन संख्याएं दी गई हैं। इनका अर्थ है एक उदात्त, दो स्वरित, तीन अनुदात्त। ऋग्वेद की ऋचाओं में उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं होता है। सामवेद में उस पर एक संख्या होती है। ऋग्वेद में स्वरित वाले वर्ण के ऊपर खड़ी लकीर होती है। सामवेद में उस पर दो संख्या होगी। इसी प्रकार ऋग्वेद में अनुदात्त पर वर्ण के नीचे पड़ी लकीर होती है। सामवेद में उस पर तीन संख्या होगी। उदात्त के बाद आने वाले अनुदात्त पर स्वरित का चिन्ह होता है और स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्त वर्ण या वर्णों पर कोई चिन्ह नहीं होता है। इसी प्रकार सामवेद में भी चिन्ह दो के बाद यदि कोई अनुदात्त वर्ण है तो उस पर कोई भी अंक नहीं होगा और वह खाली छोड़ा जाएगा। ऐसे रिक्त वर्णों में प्रचय कहते हैं। इनका उच्चारण एक श्रुति एक स्वर में न ऊंचा न नीचा स्वर में किया जाता है। स र ग म के अनुसार एक संख्या म है, दो संख्या ग है, तीन संख्या रे है। प्रचय वाले वर्ण पर भी ग की ध्वनि होगी। संकेत उदात्त उ अनुदात्त अस्वरित स्व प्रचय प्र षडज स ऋषभ रे गांधार ग मध्यम म पंचम प धैव ध निषादनी। उदाहरण के रूप में सामवेद का प्रथम मंत्र एक पाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ऋग्वेद के अनुसार अग्न आया ही वीतये। सामवेद के अनुसार अग्न आयो ही वीतये। उदात्त आदि संकेत उ अ उ स्व प्र अ उ स्व। सरगम के संकेत म रे म ग ग रे म ग। दो ग्राम तान आदि नारदीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा में नारद ने शिक्षा संबंधी कतिपय उपयोगी निर्देश दिए हैं। संक्षेप में विशेष उल्लेखनीय बातें ये हैं। क स्वर सात हैं, ख ग्राम तीन हैं, ग मूर्छनाएं 21 हैं, घ तान 49 हैं। सात स्वर ये हैं षडज स ऋषभ रे गांधार ग मध्यम म पंचम प धैव ध निषाद नी। ग्राम तीन है मंद्र निम्न मध्य मध्यम तीव्र उच्च। तीन सप्तक होते हैं। इनमें प्रथम निम्न या कोटि ध्वनि के लिए हैं, द्वितीय मध्यम या साधारण ध्वनि के लिए हैं और तृतीय तीव्र बहुत पतली या तीखी ध्वनि के लिए हैं। गायक की ध्वनि के अनुसार मंद मध्यम या तीव्र सप्तक का उपयोग किया जाता है। इन तीन सप्तकों को तीन ग्राम कहा गया है। मूर्छनाएं 21 हैं। सात स्वर गुणे तीन ग्राम बराबर 21 मूर्छनाएं होती हैं। प्रत्येक सप्तक के एक एक स्वर से निकलने वाली ध्वनि को मूर्छना कहते हैं। ये स्वर और ग्रामों के भेद से 21 हो जाती हैं। तान 49 हैं। सात स्वर गुणे सात स्वर बराबर 49। सात स्वरों के परस्पर एक दूसरे के मिश्रण से 49 तान विभिन्न ध्वनियां हो जाती हैं। सप्त स्वराः त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशतिः ताना एकोन पंचाशत इत्येतत् स्वरमंडलम्। नारदीय शिक्षा ने ही वर्णन किया है कि वीणा वेणु के अनुसार सामवेद के एक दो तीन आदि अंक क्रमशः मध्यम गांधार आदि के सूचक हैं। सामवेदी अंक और वीणा के स्वरों को इस प्रकार रख सकते हैं। सामवेदी अंक एक प्रथम वेणु मध्यम म, दो द्वितीय गांधार ग, तीन तृतीय ऋषभ रे, चार चतुर्थ षडज स, पांच पंचम निषाद नी, छ षष्ठ धैवत ध, सात सप्तम पंचम प। अर्थात सामवेद का प्रथम स्वर उदात्त मध्यम म से प्रारंभ होकर अवरोह की ओर म ग रे स नी ध प के क्रम से रहता है। स्वर निर्धारण उक्त सारणी के अनुसार करें। यह साम गानाम प्रथमः स वेणुर मध्यमः स्वरः, यो द्वितीयः स गांधारः, तृतीयस्तु वृषभः स्मृतः इत्यादि नारदीय शिक्षा। तीन साम विकार। किसी भी ऋचा को गान का रूप देने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। इन्हें सामवेद की पारिभाषिक शब्दावली में विकार कहा जाता है। ये छह प्रकार के हैं। इन विकारों में स्तोभ मुख्य है। जैमिनी ब्राह्मण का कथन है कि स्तोभ साम गान के अलंकरण है। इनसे मंत्र की शोभा बढ़ जाती है। स्तोभा ह व आसाम अलंकारा क स्तोभ। ऋचा को गान का रूप देने के लिए कुछ अतिरिक्त पद मंत्र के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये पद आलाप के लिए होते हैं, जैसे औहोवा हाउ इत्यादि ये पद सामान्यतया निरर्थक होते हैं। शाखाओं के भेद से स्तोभ के पदों में भी भेद होता है, जैसे कौथुमीय शाखा वाले हाउ राई आदि जोड़ते हैं और रणायनीय शाखा वाले हावू राई आदि। संगीत के अनुसार यह माना जाता है कि इन स्तोभ अक्षरों में कुछ दैवीय शक्ति होती है। स्तोभ अक्षरों को दो वर्ग में विभक्त किया गया है, एक अन्वयी, दो अनुषंगी। अन्वयी ऋचा के प्रारंभ में जुड़ते हैं और अनुषंगी स्तोभ दो शब्दों के मध्य में या मंत्र के अंत में। जैमिनीय ब्राह्मण में स्तोभ अक्षरों को 1 से लेकर 17 अक्षरों तक का गिनाया गया है। ख विकार मंत्र के शब्दों में गान की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किया जाता है, जैसे अग्ने को ओग्नाई बोलना। ग विश्लेषण एक पद का पृथककरण अर्थात एक पद को दो या अधिक खंडों में विभक्त करना, जैसे वीतय को वो ई तो या ई कहना। घ विकर्षण एक स्वर को लंबा खींचकर देर तक उच्चारण करना, जैसे ये को या दो तीन ई अर्थात दीर्घ और प्लुत तक लंबा खींचना, दो दीर्घ तीन प्लुत। ग भ्यास किसी पद का दो या अधिक बार उच्चारण करना, जैसे तो या दो ई तो या दो ई दो बार उच्चारण करना। च विराम गान की सुधा के लिए किसी पद के बीच में ही रुक जाना, जैसे गृणानो हव्यदातये का गृणानो ह व्यदातये के रूप में उच्चारण करना, पद के मध्य में ह पर ही थोड़ा रुकना। चार पूर्व गान प्रक्तिगान और उत्तर गान। पूर्व गान को ही प्रक्तिगान भी कहते हैं। पूर्व गान का अभिप्राय है सामवेद के पूर्वार्षिक खंड में पठित मंत्र। ये मंत्र विभिन्न गानों के आधार हैं, अतः इन्हें पूर्व गान या प्रक्तिगान कहते हैं। ये पूर्वार्षिक में पढ़े गए हैं, अतः पूर्व गान है। इनके दो भेद हैं, ग्राम गेय गान और अरण्य गेय गान। पूर्वार्षिक के आग्नेयेन्द्र और पौमान कांड ग्राम गेय गान है, अरण्य कांड अरण्यो गेय गान है। ग्राम में गाए जाने वाले साम मंत्र ग्राम गेय गान में आते हैं और अरण्य या वन में गाए जाते हैं जाने वाले अरण्य कांड के मंत्र अरण्य गान में आते हैं। पूर्वार्चिक में एक मंत्र के आधार पर एक गीति होती है। पूर्वार्चिक के मंत्रों को साम योनि मंत्र, साम योनि या केवल योनि कहते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्वार्चिक के ये मंत्र आधार मंत्र हैं। इनके आधार पर या इनकी तर्ज पर उत्तरार्चिक के मंत्रों का गान होता है। उत्तर गान का अभिप्राय है उत्तरार्चिक के मंत्रों पर आश्रित गान। उत्तरार्चिक में दो तीन या चार मंत्रों के एक एक सूक्त हैं। इनकी पहली ऋचा पूर्वार्चिक वाली होती है, उसी के आधार पर या तर्ज पर उत्तरार्चिक के सूक्तों के मंत्रों का गान होता है। पांच साम गान के चार भेद। साम योनि मंत्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने विभिन्न गानों की रचना की। साम गान चार प्रकार का होता है, एक ग्राम गेय गान, इसे प्रक्तिगान और वेय गान भी कहते हैं, या ग्राम या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है। दो आरण्य गान या आरण्यक गेय गान, यह वनों या पवित्र स्थानों पर ही गाया जाता है, इसको आरण्यक या रहस्य गान भी कहते हैं। आरण्य कांड के साम योनि मंत्रों को छंदस कहते थे और उसके गान को छांदस कहा जाता था। तीन ऊह गान। ऊह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास। पूर्वार्चिक से संबद्ध उत्तरार्चिक का गान इस विधि से होता था। इस सोमयाग एवं विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता था। ऊह की प्रकृति या आधार वेय गान या प्रकृति गान है। पूर्वार्चिक के आग्ने आदि कांडों के मंत्रों पर ऊह गान निर्भर है। इसका अभिप्राय यह है कि वेय गान में प्रयुक्त स्वर राग आदि का आश्रय लेकर ऊह गानों का निर्माण होता है। चार ऊहय गान या रहस्य गान। ऊहय गान रहस्य गान है। रहस्यात्मक होने के कारण सर्वसाधारण के सामने इनका गान निषिद्ध माना जाता है। ऊह गान और ऊहय गान ये दोनों मौलिक न होने के कारण प्रक्तिगान कहे जाते हैं। कौथुमी और रणायनीय शाखा के अनुसार साम गानों की संख्या 2722 है तथा जैमिनीय शाखा के अनुसार गानों की संख्या 3681 है। इसका विवरण इस प्रकार है, गान का नाम कौथुमीय रणायनीय गान जैमिनीय गान, एक ग्राम गेय गान 1197, 1232, दो आरण्य गेय गान 294, 291, तीन ऊह गान 1026, 1802, ऊह्य गान 205, 356, योग 2722, 3681, छह शास्त्र स्तोत्र स्तोम और विष्टुति ये सामवेद में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं। इनके लक्षण ये हैं, क शस्त्र, शस्त्र का लक्षण है अप्रगीत मंत्र मंत्र साध्या स्तुति शास्त्रम अर्थात गान रहित मंत्रों के द्वारा संपादित स्तुति को शास्त्र कहते हैं। अतएव ऋग्वेद में वर्णित स्तुति मंत्र शास्त्र कहे जाते हैं। स्तोत्र प्रगीत मंत्र साध्या स्तुति स्तोत्रम गान युक्त मंत्रों द्वारा संपादित स्तुति को स्तोत्र कहते हैं। सामवेद में गान युक्त मंत्र है, अतः सामवेद के मंत्र स्तोत्र की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार शास्त्र ऋग्वेदीय मंत्र और स्तोत्र सामवेदीय मंत्र है, यही दोनों में अंतर है। सायण का कथन है कि सामान्यतया एक स्तोत्र के लिए तीन ऋचाएं होनी चाहिए। सामवेद के उत्तरार्चिक में तीनों ऋचाओं वाले सूक्त हैं, स्तोत्र में उत्तरार्चिक वाले ही सूक्त आते हैं। ये तो मंत्राः स्तोत्र रूपाः उत्तरासु त्रिचेषु ते सायण तांड्य भाषेश को ही प्रगात भी कहते हैं। कस्तुम त्रिच तीन ऋचा वाले सूक्त सभी स्त्रोतों को जब आवृत्ति पूर्वक गान किया जाता है तो उसे स्तोम कहते हैं। आवृत्ति युक्तम तत्साम स्तोम इत्यभिधीयते सायण तांडे ब्राह्मण भाष्य भूमिका। इस प्रकार स्तोम त्रिच स्त्रोतों पर निर्भर है, यह स्तुति का ही एक प्रकार है। घ विष्टुति विष्टुति का अर्थ है विशेष प्रकार की स्तुति। विष्टुति स्तोत्र रूपी त्रिचों के द्वारा संपादित होती है। इसे गान के तीन पर्याय या क्रम समझना चाहिए। त्रिच के तीन मंत्रों में पहले दूसरे या तीसरे मंत्र को कितनी बार दोहराते हैं, इस आधार पर स्तोमों की संख्या निर्धारित की गई है। एक बार तीनों मंत्रों के आवृत्ति सहित पाठ को एक आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार तीन आवृत्ति होने पर एक स्तोम पूरा होगा। इस दृष्टि से स्तोमों के 9 भेद किए गए हैं। ये भेद हैं एक त्रिवित्र, तीन दो, पंच दश पंद्रह, तीन सप्त दस सत्रह, चार एक विंश इक्कीस, पाँच चतुर्विंश चौबीस, छः तृणव सत्ताईस, सात त्रयस्त्रिंश तैंतीस, आठ चतुश्चत्वारिंश चौवालीस, नौ अष्ट चत्वारिंश अड़तालीस। इसका अभिप्राय यह है कि तीन विष्टुतियों पर राय आवृत्ति में एक त्रिश के मंत्र कुल कितनी बार बोले गए उसी आधार पर तीन से लेकर अड़तालीस तक की संख्याएं हैं। त्रिवित्र का अभिप्राय है कि त्रिश के तीनों मंत्र केवल एक एक बार बोले गए। एक स्तोम तीन पर्याय में पूरा होता है, अतः पंचदश स्तोम का अभिप्राय है कि प्रत्येक पर्याय में पांच बार गायन हुआ। एक पर्याय में कौन सा मंत्र कितनी बार बोला जाएगा, इसके नियम निर्धारित हैं। उदाहरण के लिए पंचदश स्तोम को लीजिए। विष्टुति पर्याय मंत्र एक मंत्र, दो मंत्र, तीन कुल कितनी बार? एक, तीन बार, एक बार, एक बार बराबर पांच बार, दो एक तीन एक बराबर पांच बार, तीन एक एक तीन बराबर पांच बार, योग 15 बार। तीसरे पर्याय की समाप्ति पर स्त्रीज के 15 मंत्रों का कुल 15 बार पाठ हुआ, अतः इसे पंचदश स्तोम कहते हैं। इस प्रकार अन्य स्तोमों के लिए विशिष्ट गणना पद्धति है। याग के दृष्टि से सामगान में बहिष्प पवमान आदि 33 प्रमुख स्तोत्र, 9 स्तोम और 28 विष्टुतियां हैं। इनका विशेषण वर्णन तांडे ब्राह्मण के द्वितीय और तृतीय अध्याय में किया गया है। साथ सामगान सामवेद के विभिन्न मंत्रों से लेकर विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग राग पर अलग अलग तान आदि निकालते हैं। इन गानों के लिए पर्क, बारहिश आदि नामों का प्रयोग किया गया है। एक ही मंत्र अनेक गानों के आधार पर अनेक प्रकार का हो जाता है। उदाहरण के लिए सामवेद के प्रथम मंत्र का एक पाद अथवा एक चरण लिया जा रहा है, इस पर गौतम के दो पर्क और कश्यप का एक बारहिश लेकर यह तीन प्रकार का गान हो जाता है। मंत्र अग्न आया ही वीतये एक गौतम का पर्क, ओग्नाई आया ही तीन वो ई तो या दो ई तो या दो ई दो, कश्यप का बारहिश, अग्न आया ही वीतया ई तीन गौतम का पर्क, अग्न आया ही वा पांच ई तो या ई आठ। सामगान की पांच भक्तियां विभाग पंचविध सूत्र में सामगान की पांच भक्तियों का वर्णन है। ये हैं प्रस्तावोद्गीत, प्रतिहारोपद्रव, निधनानि भक्तयः। प्रतिहार सूक्त के व्याख्याकार वरदराज का कथन है कि इन पांच में हिंकार और ओमकार को और जोड़ देने से इन भक्तियों की संख्या 7 हो जाती है। हिंकार को प्रस्ताव से पहले जोड़े और ओमकार को उद्गीत से पहले। सप्तवा हिंकार प्रस्तावात पूर्व उद्गी थाद ओमकार। वरदराज पांच भक्तियां ये हैं, एक प्रस्ताव, दो उद्गीत, तीन प्रतिहार, चार उपद्रव, पांच निधन। हिंकार और ओमकार जोड़ने पर ये 7 भक्तियां हो जाती हैं। मंत्र का गान ऋत्विज मिलकर करते हैं, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, तीनों के कर्तव्य पृथक पृथक निर्दिष्ट हैं। उदाहरण के रूप में सामवेद का प्रथम मंत्र प्रस्तुत है, अग्न आ याहि वीतय गृणानो हव्य दातय निहोता सत्सि बर्हिषि। भक्ति गायक मंत्र का अंश। एक, प्रस्ताव प्रस्तोता हु ओग्नाई। दो, उद्गीत उद्गाता ओम आयाहि वीतय गृणानो हव्य दातय। तीन, प्रतिहार प्रतिहर्ता निहोता सत्सि बर्हिषि ओम। चार, उपद्रव उद्गाता निहोता सत्सि ब। पांच, निधन तीनों मिलकर ऋषि ओम। प्रतिहार वाले अंश के दो भाग होंगे। एक का नाम उपद्रव है, इसे उद्गाता गान करेगा और शेष भाग को निधन अर्थात अंतिम अंश कहते हैं। इसे प्रस्तोता उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों मिलकर गाते हैं। मंत्र के प्रारंभ में हु लगा देते हैं, यह छठी भक्ति है। उद्गीत के मंत्र को पहले ओम लगा देते हैं, यह सातवीं भक्ति है। इस प्रकार ये सामगान के साथ भेद हो जाते हैं। पर्व, प्रत्येक भक्ति या मंत्रांश के कुछ छोटे छोटे विभाग किए जाते हैं, इन्हें पर्व कहते हैं। जैसे बर्हिषि को दो भागों में बांटा गया है, बर्हिषि, इसमें एक पर्व के बाद थोड़ा सा विराम होता है। जैमिनी उपनिषद, ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में इन सभी भेदों का विस्तृत वर्णन रूपकों के माध्यम से किया गया है। छांदोग्य में हिंकार और ओंकार का सम्मिलित करते हुए सात प्रकार के साम का वर्णन है, साथ ही ओम या उद्गीत की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। नौ, तीन मूल स्वर। मूल स्वर तीन है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। यह ऋग्वेद के काल से ही प्रचलित है। इनमें से उदात्त स्वर उच्च ध्वनि या तीव्र स्वर के लिए था, अनुदात्त निम्न या हल्के स्वर के लिए था और स्वरित इन दोनों के मध्यगत स्वर के लिए था। इन तीन मूल स्वरों के आधार पर षड्ज आदि लौकिक स्वरों का उद्भव हुआ है। नारदीय शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उदात्त आदि से इन लौकिक स्वरों का विकास हुआ है। मूल स्वर लौकिक स्वर। एक, उदात्त निषाद नि गांधार ग। दो, अनुदात्त ऋषभ रे धैवत ध। तीन, स्वरित षडज स मध्यम पंचम प। उदात्ते निषाद गांधारौ अनुदात्ते ऋषभ धैवतौ स्वरित प्रभवा ययेते षडज मध्यम पंचमाः। याज्ञवल्क शिक्षा में भी इसी प्रकार का वर्णन है। पहले वर्णन किया जा चुका है कि सामवेदीय स्वरों का वेणु के मध्यम आदि स्वरों के साथ किस प्रकार सामंजस्य है। कृष्ट स्वर सामगान के सात स्वरों में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र पांच और अतिस्वर छह के अतिरिक्त क्रष्टु स्वर का भी उल्लेख मिलता है। क्रष्टु स्वर किसी स्वर को खींचकर ऊपर स्थापित करने का बोध कराता है। मंद्र निम्न स्वर है तथा अतिस्वर अति निम्न स्वर का बोधक है। दस, सामवेदीय स्वरों का विकास। नारदीय शिक्षा में स्वरों के विकास का संकेत प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा में उल्लेख है कि तीन प्रकार के स्वर थे, एक आर्चिक, दो गाथिक और तीन सामिक। सर्वप्रथम आर्चिक संगीत का विकास हुआ, यह एक स्वर वाला था, यह ऋचाओं पर आश्रित था। तदनंतर गाथिक संगीत आया और वह दो स्वरों वाला था, यह गाथाओं पर आश्रित था अतः गाथिक कहलाता था। इसके पश्चात सामिक संगीत आया, यह तीन स्वरों वाला था, इसका आधार सामवेदीय मंत्र थे। इस प्रकार साम स्वरों के विकास के तीन सोपान नारदीय शिक्षा में प्राप्त होते हैं। आर्चिकम गाथिकम चैव सामिकम च सरांतरम कृतांतेश्वर शास्त्राणाम प्रयोक्तव्यम विशेषतः। एकांतरह स्वरो यरीक्षु गाथासु दयंतरह स्वरः सामसु त्रयंतरम विद्याद एतावत् स्वरतोंतरम। आधुनिक विद्वानों का मत है कि सामिक के पश्चात स्वरांतर प्रकार का संगीत आया और इसमें चार स्वर थे। इसे बाद पांच स्वरों वाला संगीत आया, उसे औडव संगीत कहते थे। इसके बाद छह स्वरों वाला संगीत आया और उसे शाडव संगीत कहा गया। इस शाडव संगीत के आधार पर सात स्वरों वाला संगीत का विकास हुआ। श्री स्वामी प्रज्ञानंदन नानंद और डॉक्टर जयदेव सिंह जी ने साम स्वर के विकास के ये दो सोपान बताए हैं। स्वामी प्रज्ञानानंद ने डॉक्टर जयदेव सिंह को उद्धृत किया है कि सामवेदीय संगीतज्ञ के विकास के दो सोपान थे। प्रथम सोपान में केवल तीन या चार स्वरों का ही प्रयोग होता था, द्वितीय सोपान में अन्य तीन स्वरों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार सात स्वरों वाले सामवेदीय संगीत का विकास हुआ। तांड ब्राह्मण के उल्लेख से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण ग्रंथों के काल में संगीतज्ञ मंद्र मध्य और तार इन तीन सप्तकों के प्रयोग से परिचित थे। तांडे ब्राह्मण का कथन है कि प्रारंभ मंद्र स्वर से करें, तत्पश्चात स्वर को ऊंचा करते हुए तारतर पर ले जावे और उसके बाद तारतम पर जावे। इस प्रकार क्रमशः नीचे से ऊपर या अवरोह से आरोह की ओर जावे। मंद्र मिवाग्र आददी ताथ तारतरम अथ तारतमम। सामवेदीय संगीत की यह संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। विशेष विवरण के लिए तांडव महाब्राह्मण, नारदीय शिक्षा आदि ग्रंथों का अवलोकन उपयोगी है।